सुधीश जी नमस्कार।
नमस्कार अनीता जी।
सुधीश जी, उधर दिल्ली सरकार और दिल्ली कॉरपोरेशन के बीच कुछ ऐसा मतभेद हो गया है कि दिल्ली में गंदगी इकट्ठी होती जा रही है।
जी अनीता जी, ऐसा लगता है कि दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान की वाट लग गई है।
क्या मामला क्या है?
कर्मचारी जो दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी है, जिनकी संख्या 60,000 के करीब है
जी,
उनको 3 महीने से तनख्वाही नहीं मिली।
अच्छा।
और जो दिल्ली में दिल्ली सरकार है, दिल्ली स्टेट की सरकार है, जो केंद्र शासित राजधानी है दिल्ली में, जहां आप पार्टी की सरकार है, दिल्ली में जहां केंद्र सरकार है, दिल्ली में जहां कॉरपोरेशन है तीन
जी,
उनके बीच में द्वंद्व चला हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार सीधे सामने नहीं है, लेकिन एमसीडी में बीजेपी के लोगों का कब्जा है और सरकार पर आप पार्टी का कब्जा है। तो आप पार्टी ने एक फंड दे दिया था एमसीडी को पिछली जब हड़ताल हुई थी कि इनको पैसा दिया जाए। आज वो आरोप लगा रही है कि एमसीडी ने उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया, कहीं और खर्च कर दिया है, जबकि एमसीडी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स बहुत पहले से ही कम थे, आपने हमको बिल्कुल लगभग एक तरह से सूखा कर दिया है, हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए इनको हम तनख्वाह कहाँ से दें। क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली है 3 महीने से, इसलिए वो हड़ताल पर है और दिल्ली के हर मोहल्ले में, हर सड़क पर, हर गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और इस तरह से स्वच्छ भारत अभियान की वाट लग गई।
अच्छा, विश्व प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलों पर भी कुछ संकट आ पड़ा है?
जी हाँ, देखिए ये तो अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जो हमारे यहाँ बहुत सी स्टेट्स में बीफ का प्रतिबंध लगाया हुआ है, उस वजह से संकट चमड़े का भी पैदा होने वाला है, चमड़े के कारीगरों का संकट भी पैदा होने वाला है, जिसका पहला इंडिकेशन कोल्हापुर से आया है। कोल्हापुर कोल्हापुरी चप्पलों के लिए प्रसिद्ध है
जी।
और हिंदुस्तान का हर आदमी उनकी खास बातों को, कोल्हापुर चप्पलों की खास डिजाइन को, खास रंग को, खास तरकीब को, खास सुंदरता को जानता है। ये करीब 6 लाख चप्पलें हर साल बना करती है भारत में, 9 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, 30% माल एक्सपोर्ट होता है और 10,000 कारीगर इसमें काम करते हैं और ये कम से कम 1 दर्जन प्रकार की डिजाइन वाली होती है
जी।
इनके सामने संकट ये आ गया है कि जब से बुलक को काटना बंद हुआ है तो उसकी खाल को खींचना भी बंद हो गया है, उसको साफ करना बंद हो गया है, खाल क्राइसिस में, खाल कमी पड़ रही है खाल की और भैंसे की खाल से बन नहीं सकती, इसलिए संकट आने वाला है। ये बात वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने घोषित कर दी है, जो कि छोटे स्केल पर ये कुटीर उद्योग की तरह है, मामूली से लोग इसको बनाते रहते हैं, इसके लिए कोई बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर ये संकट गहराने वाला है, ये इंडिकेशन आ रहे हैं
जी। अच्छा, उधर हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसके अनुसार अब महिलाएं उत्तराधिकारी बन सकती हैं, जो पहले नहीं था, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
हिंदू यूनाइटेड फैमिली का जो एक कानून है उसमें HUF को, हिंदू यूनाइटेड फैमिली के फंड को संचालित करने का अधिकार अब तक पिता के पुत्र को, सबसे बड़े पुत्र को ही होता था, लेकिन एक सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है कि औरत भी, पति की पत्नी भी पूरी तरह से उत्तराधिकारी हो सकती है, यानी फर्स्ट उत्तराधिकारी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बड़ा लड़का ही उत्तराधिकारी हो। ये बड़ा क्रांतिकारी फैसला है
जी।
इसका अमल काफी गहराई से नीचे तक असर डालेगा, क्योंकि अब तक स्त्रियों को बेटों के ऊपर निर्भर कर दिया जाता था, पिता का पुत्र ही अधिकारी होगा, अब यह पत्नी भी अधिकारी हो सकती है, बराबरी की अधिकारी हो सकती है, तो इससे काफी हमारे परिवारों के भीतर अच्छी बात भी है मेरी नजर से, ये बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, लेकिन इसके कुछ तनाव भी होनेंगे।
सुधीश जी, जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी और PDP का अलायंस था उसमें अब कुछ मुश्किलें आ रही हैं, महबूबा मुफ्ती जी का इसके बारे में कुछ अलग विचार है, तो कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे?
जी हाँ, जम्मू कश्मीर में प्रशासन का संकट बढ़ने जा रहा है ऐसा लगता है। जब तक मुफ्ती साहब थे, चीफ मिनिस्टर थे, वे पुराने नेता थे, चीजों को समझते थे और PDP और BJP का अलायंस होने के नेतृत्व में बना था जिसके भी चीफ मिनिस्टर हुए
जी।
और एक खास समझौता हुआ था जिसमें एक प्रोग्राम बना था, उस प्रोग्राम पर सारी चर्चा होती थी और उसके आधार पर कार्य होता था। उनकी डेथ के बाद महबूबा मुफ्ती का विचार बना है कि ये अलायंस ही अपने आप में अनपॉपुलर है, यानी कि लोगों के बीच में अच्छी इमेज नहीं गई है पीडीपी की बीजेपी के साथ अलायंस करके, ऐसा भाव निकलता है इसमें। और इस आशय से जब उन्होंने बयान दे दिया है पब्लिकली
जी,
और ये भी कह दिया है कि हम पुनर्विचार करेंगे इस अलायंस पे, तो उससे स्पष्ट है कि आगे चल करके अलायंस में कुछ खटाई पड़ सकती है, कुछ परेशानी आ सकती है। हो सकता है अलायंस की शर्तें बदल जाएं, हो सकता है नया डॉक्यूमेंट तैयार हो
जी,
हो सकता है ये अलायंस चले नहीं। फिलहाल वहां पर प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है।
भारत में दो कुछ सकारात्मक खबरें कुछ ऐसी आई हैं जिसकी तरफ ध्यान चला ही जाता है, और जो सास बहु के जो रिश्ते की एक नई मिसाल बनी है उसके बारे में कुछ बताइए।
जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक बहू है तरुणा चौहान जो मेरठ की है, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ती है और जो वहाँ की हॉकी की टॉप प्लेयर है, कैप्टन है, और नॉर्थ जोन में जब मैच होते हैं तो वो चैंपियन होती है उसकी। उस बहू की शादी हुई एक साल पहले, तो एक बच्चा हुआ
जी।
उसके पति बाहर काम करते हैं सऊदी अरब में, तो बच्चे की देखभाल करने लगी तो उससे उसका खेल बिगड़ने लगा। तो इस खेल को साधने के लिए और अपनी बहू को मदद करने के लिए उसकी सास सामने आई और उसने कहा कि बेटा तुम जाओ अपना खेल खेलो, मैं तुम्हारे बच्चे को रखूंगी। तो इस मिसाल में एक नई बात कायम कर दी कि सास जो है हमेशा बहुओं को नेगेटिवली नहीं देखा करती है, पॉजिटिवली देखा करती है, मदद भी करती है, और एक अच्छा संबंध भी दोनों के बीच हो सकता है
जी। और इसी तरह एक और खबर है, एक सबसे कम उम्र की माँ है जो अब पढ़ना चाह रही हैं, शांतना मुर्मू की बात है।
शांतना मुर्मू है, ये 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, दो बच्चियों की माँ है ये
जी।
लेकिन इनके मन में पढ़ने की इतनी ललक है कि इसके बावजूद वे पढ़ना चाहती है, 2 किलोमीटर दूर अपने गाँव से पढ़ने के लिए जाती है हाई स्कूल में। इनकी तमन्ना है ये टीचर बने, तो एक तरह से संसार की शायद सबसे कम उम्र की माँ है जो भारत में पढ़ना चाहती है और पढ़ने में बड़ी तेज भी है।